الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں جہاں ہمارے لیے مختلف قسم کی نصیحتیں ہیں, اور عجیب ہے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اس زمانے میں ان حالات میں عرب کے لوگوں میں خاص واقعات کے سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوئی, لیکن آج عرب سے اتنا دور اس زمانے سے اتنا مختلف ہمارے حالات میں ہمارے مزاج میں جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان حالات کے لیے اللہ تعالیٰ یہی بالکل یہی الفاظ میں یہی بات فرما رہے ہیں, اور ان حالات کے لحاظ سے سب سے مناسب طریقہ یہی تھا بتانے کا. وہ عجیب ایک کلام ہے جس کو واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کلام اور دوسرے حضرات نے بھی فرمایا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. یعنی ہر زمانے کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں عجیب عجیب عجائب نظر آتے ہیں, حالات کے لحاظ سے نئی نصیحتیں نظر آتی ہیں. بہرحال ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو, آپ حضرات میں محبت سے حاضر ہوتے ہیں اور یہاں کے حضرات بھی محبت سے بلاتے ہیں, میں سوچ رہا تھا کوئی ایسی بات ہو جو میرے بھی کام کی ہو اور آپ حضرات کے کام کی ہو, ہم کوئی کام کی چیز ساتھ لے کے جائیں. ظاہر ہے جب کہتے ہیں تو کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے کہنے کی برکت سے, تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. بہرحال آج کل اگر ہم سوچیں کہ ہم مختلف قسم کی خبریں سنتے ہیں, پریشانیوں کی, بیماریوں کی, حادثات کی, और जाहिर है तो होता रहता है, शुरू दौर से चलता रहा है। और कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उन्हीं बातों को बयान किया है कि ये दुनिया में जो बीमारियां हैं, आफतें हैं, नई नई परेशानियां हैं, घर में परेशानियां होती हैं, और अमवात हैं या जलजले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो होती रहती हैं, इंसान सोचता है इसके असबाब क्या हैं। और जो असल चीज़ सोचने की है वो ये है कि उसका हमें उस मौके पर करना क्या है। दोनों चीज़ें हैं कि इसके असबाब क्या हैं, ये चीज़ें क्यों वजूद में आती हैं, कुरान इस बारे में कुछ कहता है या नहीं कहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कुछ फरमाया या नहीं फरमाया, और हमें ऐसे मौके पर करना क्या है। हुज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ था, वो तो आजकल तो इतनी नॉर्मल चीज़ हो गई है, हमें हिसाबात से मालूम होता है फलाने दिन फलानी तारीख पे वो सूरज इस जगह पे होगा तो अच्छा थोड़ी देर के लिए रोशनी उसकी कम हो जाएगी, फिर भी होता है, तो इतनी नॉर्मल चीज़ हो गई हमारे लिहाज से ऐसे कि हिसाबात से पहले से मालूम होता है। लेकिन हुज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वाक़या पेश आया था सन 10 हिजरी में, जब हुज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था। अजीब अल्लाह ताला के निज़ाम के किस तरीके से अहकाम लोगों के जहनों में बिठाए कि उस वक्त लोगों के जहनों में जाहिलियत के तरीक़े और जाहिलियत के ज़माने से एक सोच थी कि दुनिया में जब कोई बड़ा हादसा पेश आता है, कोई बड़ा वाक़या होता है या किसी बड़े शख्स की मौत होती है तो ये इस तरह सूरज ग्रहण हो जाता है। अल्लाह ताला का करना हुआ कि इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु अफरासी के साहबजादे, अभी तक अफरासी की उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा है, सन 10 हिजरी 11 हिजरी में वफात हुई है, तो सन 10 हिजरी उस मौके पर आप रसूल के साहबजादे एक ही हैं इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका भी इंतकाल हो गया। तो लोगों ने कहा, बाज़ लोगों ने कहा कि ये चूँकि इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ है, वफात हुई है, एक बड़ा हादसा हुआ है, उसकी वजह से सूरज ग्रहण हो गया। हुज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्ना शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। ला यनखसिफान लिमौत अहद वला लिहयातिही, किसी की जिंदगी मौत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला निशानियां जाहिर फरमाते हैं ताकि बंदों को आखिरत की तरफ मुतवज्जह फरमाए। तो ये दुनिया में परेशानियों के असबाब, दुनिया में जो नई नई चीज़ें होती हैं, जलजले वो क्यों होते हैं, कुरान करीम ने भी फरमाया, ज़हर अल फसाद, जो मैंने आयत अभी पढ़ी थी, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, खुश्की का इलाका हो या समुंदर का इलाका हो, कहीं तूफान आ गया और सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया, कहीं बहरी जहाज जा रहा था डूब गया पूरा का पूरा, मेरी वाकयात उसके भी हुए। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, खुश्की का इलाका है, जलजले आ गए, तूफान आ गया, कुछ भी हो सकता है, नई नई चीज़ें होती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं। कल हवा चल रही थी, मैं सोच रहा था आप हजरात ने नोट किया होगा कि हवा का सिलसिला, मुझे याद है, पता नहीं कि बात हजरात को अगर याद हो कि अब से कई साल पहले की बात है, यानी इसलिए कि बसा अवकात हमें इन चीज़ों की मसलियातें समझ में नहीं आती, हवा क्यों चलती है और इतनी तेज़ हवा के पत्ते गिर गए। कुछ अर्सा पहले जब इंसान देखता है ना तो बात सही समझ में आती है। मुझे याद है हम लोग बफलों में थे, अभी तक तेज़ हवाएं वगैरह नहीं चली थी, अचानक से हुआ है कि मौसम ठंडा हो गया, बर्फ़ गिरी और इतनी बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं गिरी थी, अचानक मौसम ठंडा हो गया, अभी दरख्तों में पत्ते लगे हुए थे, बर्फ़ गिरी, इसका नतीजा क्या निकला कि बर्फ़ जब गिरी और पत्ते भी दरख्तों में मौजूद थे, ये अल्लाह ताला के निज़ाम है, पहले पत्ते गिरेंगे फिर बर्फ़ गिरेगी, पत्ते मौजूद थे तो हुआ है कि बर्फ़ जो है वो दरख्तों के ऊपर ठहर गई, उसकी वजह से वज़न हो गया, वज़न हुआ तो दरख्त गिरने शुरू हो गए, कई दरख्त गिरे थे, कई शाखें गिरी थी, कई तारे टूट गई थी, कितने कितने अरसे तक, कई दिनों तक तो वहाँ बिजली ही नहीं थी बहुत से इलाकों में। अल्लाह ताला का निज़ाम है, नहीं पहले पत्ते गिरेंगे फिर सर्दी आएगी फिर बर्फ़ आएगी, ताकि बर्फ़ दरख्तों के ऊपर ज़्यादा ना जमे वरना उसकी शाखें टूटती गिर जाएँ। अल्लाह ताला का निज़ाम, ये अल्लाह ताला जो हमें दिखाते हैं। एक दुआ आप हजरात इनमें आपने जो अलहिज़्बुल आज़म दुआओं की किताब है, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हदीस की दुआएं जमा फरमाई हैं उसमें, उस किताब में बड़ी अच्छी किताब है, अगर आप हजरात हासिल कर सकें पढ़ सकें। वो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस हैं और इनकी बड़ी बड़ी हदीस की खिदमात हैं, इन्होंने एक किताब जमा की है अल हिजबुल आजम के नाम से। उसमें दुआएं जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं मनकूल हैं, उन्होंने उसमें वो दुआएं जमा कर दी हैं। वो दुआएं उसको उन्होंने इस तरह बनाया है कि वो सब दुआएं जमा कर दी, उसके बाद उन्होंने उसके 7 हिस्से कर दिए कि आप एक दिन में यह हिस्सा पढ़ लें, दूसरे दिन में यह हिस्सा पढ़ लें। ऊपर लिखा हुआ है हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। उसमें मकसद ये नहीं है कि नहीं इस दिन ये दुआ पढ़ने की कोई खासियत है, मतलब ये कि आप पूरे हफ्ते में आप पढ़ेंगे तो ये इतनी सारी दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी एक पूरे हफ्ते में आप मांग लेंगे। आप चाहे एक ही दिन में मांग लें पूरी। बहुत से लोग होते हैं मैदान आराफात में बोले के खड़े हो जाते हैं और सब दुआएं एक ही दिन में मांग लेते हैं। मांगने की जगह है, आपको कभी मौका मिलता है दुआएं मांगने का, पूरी हिजबुल आजम दुआओं की से भरी हुई है। लेकिन उसमें इसका भी अगर ख्याल हो कि आप समझ के उसको पढ़ लें, समझ के पढ़ लें। इसे कि एक होता है दुआ का पढ़ना, एक होता है दुआ का मांगना, तो उसमें तर्जुमा भी है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 7 दिन वाला जो है उसको तो हर एक के लिए मुश्किल होगा, इसलिए कि जो अरबी जानते हैं वो तो एक दिन में एक दिन का पढ़ लेंगे और हफ्ते में ख़त्म कर लेंगे। आप हजरात यानी जो हजरात अरबी से वाकफियत नहीं रखते, बहुत से हजरात, तो उनके लिए मज़ीद आसान कर दिया गया कि उसको बाद में किसी ने 30 हिस्सों में कर दिया, ताकि चले इसको जितनी किताब थी इतनी ही थी लेकिन उसको 30 हिस्सों में कर दिया ताकि आप एक महीने में उस किताब को पूरा कर सकें। अब आसान हो गया कि अच्छा आज आज पहली तारीख है तो ये वाला हिस्सा पढ़ना है, 2 तारीख को मुझे ये पढ़ना है, 3 तारीख को ये पढ़ना है, तो एक महीने में वो सब दुआएं आप एक मरतबा पढ़ लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं, कुरान की सिखाई हुई दुआएं, दोनों तरह की, कुरान करीम की दुआएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं, जाहिर है इन दुआओं में जो बरकत है उसमें जो नूरानियत है और उसमें जो कबूलियत है वो जाहिर हमारे अल्फाज में नहीं आ सकती। तो बाज़ ऐसी दुआएं भी हमें याद होनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाई हैं, और उन दुआओं में भी बाज़ दुआएं वो हैं जिसको आप अल्लाह ताला ने सिर्फ यह फरमा दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में, इससे कि जाहिर है अब हम अपनी ज़िंदगी में सोचें कि हमने हमारी ज़िंदगी में कितनी दुआएँ मांगी हैं। हम सोचें अच्छा फलानी दुआ उनमें से कोई अच्छी दुआ मुंतखब करें। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम उनमें भी ख़ास ख़ास अंबिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, उन अंबिया की ज़िंदगियों की दुआओं में से ख़ास ख़ास दुआएं कुरान में बयान कर दी कि फलाने नबी ने यह दुआ मांगी है। क्यों? ताकि बंदो तुम लोग भी मांग लो। ये इख्तियार पहलों को नहीं दिया गया था, यह हमें इस उम्मत को दिया गया कि देखो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, ये तुम्हारे सामने है, तुम भी ये मांग लिया करो। अजीब अजीब दुआएँ हैं ये, तो सिर्फ वो दुआएँ हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ हम तक नकल कर दी कि ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, रब्बी ज़िदनी रब्बी हबली हुक्मन वालहिक्नी बिस्सालिहीन। इतनी जामे दुआ है, हिकमत इल्म और हिकमत, इल्म का आला दर्जा हिकमत है, समझदारी, रब्बी हबली हुक्मन, ए अल्लाह मुझे इल्म में पुख्तगी और हिकमत के साथ इल्म अता फरमा, वालहिक्नी बिस्सालिहीन, नेक लोगों में शामिल कर दें। सुनिए आखिरत की हर मिल गई, आखिरत में नेकों के साथ शामिल हो गया, इल्म सही हासिल हो गया, इल्म और हिकमत दोनों चीज़ें हासिल हो गई, कामयाबी आखिरत की मिल गई, पूरी बहुत जामे दुआ है। लेकिन ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने बताया कि फलाने नबी ने मांगी थी, ये भी बहुत खास मुकाम रखती हैं। दूसरी वो दुआएं हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया आप कह दीजिए, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, हुक्म फरमाया, तो जाहिर है अब तो और ज्यादा ताकीद आ गई, या कुल रब्बि इग़फिर वारहम वा अंता खैरुर राहिमीन। इन दुआओं के अंदर कितनी खासियत होगी, कितनी तासीर होगी। एक बच्चा कुछ ज़रूरतमंद है, यानी उसको होता है बच्चों को तो कोई ना कोई कभी उसको कोई चीज़ चाहिए या खाना चाहिए, भूख लगी है, उसका बाप या उसकी माँ उसको कहती है अच्छा देखो ये कहो तो मैं तुम्हें यह देती हूँ। जाहिर है जब माँ या बाप उसको कह रहे हैं कि ये कहो तो बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा सलाम करो तो तुम्हें यह मिलेगा, अल्लाह कह दो तो तुम्हें यह मिलेगा, माएँ सिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं। जाहिर है अब जब उसने कह दिया, माँ तो गलत हो सकती है लेकिन आमतौर से नहीं करेगी, माँ गलत हो सकती है कि कह दे कि अच्छा ये करो तो ये मिलेगा लेकिन फिर ना मिले, अल्लाह ताला गलत नहीं हो सकते, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कहो, जाहिर देने के लिए कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दुआएं हमें सिखाई हैं, इसका बड़ा ऊंचा मकाम है, और इन दुआओं के सिखाने का मकसद और तौफीक देने का मफहूम जाहिर है कि जब अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं इसका मतलब है अल्लाह ताला देना चाह रहे हैं। तो ये दुआएं बड़ी अहम हैं। बात तो कुछ और करना चाह रहा था लेकिन ये एक काम की बात, कोई दुआ यही की थी कि कोई काम की बात आ जाए जो मेरे काम की हो, आप हजरात के काम की हो। ये एक अहम चीज़ है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको इख्तियार कर लें, अल हिज़्बुल आज़म, ये 7 दिन वाली भी मिलती है 30 दिन वाली भी मिलती है, और उन दुआओं को चाहे आप 30 दिन में ना खत्म करें, चाहे 2 महीने में खत्म करें, 3 महीने में खत्म करें, लेकिन एक एक दुआ पढ़ें, उसका आप तर्जुमा देख लें, मफहूम देख लें। बहरहाल उसमें एक दुआ ये भी आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, जो असल मौजू था मैं उसी तरफ चलता हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ आती है जिसमें अल्फाज है वो शर्रुल सईरीन, किसी की दुआओं में सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी, वो तो हमें जाहिर है कि हमें मुहद्दिसीन की बातें देखनी पड़ती हैं कि उन्होंने इसकी क्या तशरीह की है। तो एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में ये भी फरमाया वो शर्रुल सईरीन, जिसका मतलब क्या है कि बुराई आपकी तरफ नहीं, जाहिरी तर्जुमे के लिहाज से, जिसके माना यह है कि ए अल्लाह जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई बुराई आती है, तो एक तो यह है कि हम उस बुराई की निस्बत आपकी तरफ नहीं करते हैं, अदब का तकाजा है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई चीज बुराई होती है तो हमारी नजरों में वो बुरी नजर आती है, अल्लाह आपकी तरफ से वो बुरी नहीं है। जैसे पत्तों का गिरना, कोई सोचेगा पत्ते गिरने में क्या फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत बड़े बहुत सी मसले आते हैं। इसी तरह इसको कुरान से हम थोड़ा सा इस बात को मैं समझा दूँ कि कुरान करीम में सूरह कहफ तो अक्सर हजरात पढ़ते ही होंगे, बल्कि सभी पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में भी इसका तस्किरा है, हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब तस्किरा किया था कि हम यतीम जो वाक़े पेश आए थे, उसमें जब कश्ती तोड़ने की बात आई तो ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ख़ज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो अरदतु अन अईबहा, क्योंकि कश्ती तोड़ने की बात है, उसमें ऐब पैदा करने की बात है, तो खदर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया अराद रब्बू का, एक जगह आता है अराद रब्बू का, अल्लाह ताला ने ये चाहा था, लेकिन यहाँ फरमाते हैं अरद तो अनाइबा, मैंने चाहा कि उसको इबदार कर दूँ, मैंने चाहा कि उसको तोड़ दूँ। जाहिर है कि हमारी नज़रों के लिहाज से खदर अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तोड़ी थी वो ज़ाहिरन एक बुरी चीज़ थी, लेकिन अल्लाह ताला के लिहाज से उसमें बड़ी खैर थी कि उनकी कश्ती बचाना मकसद। बस अवकात होता है हमें देखने में कोई चीज़ नज़र आती है कि इसमें कोई बुराई है, हालांकि हकीकतन उसमें कोई फ़ायदा होता है, वो शर्रुल सईरीन। ए अल्लाह बुराई हमारे नज़रों में कोई चीज़ बुराई बुराई होगी, लेकिन यानी हमारे साथ कोई तकलीफ पहुंच गई, मतलब उस तरह की चीज़ें हैं कि हमें कोई तकलीफ पहुंच गई, हमें कोई ऐसी चीज़ मालूम महसूस हुई जो हमारे लिए तकलीफदेह है, परेशानी है, घर में कोई मौत का हादसा पेश आ गया, कोई बीमारी आ गई, ए अल्लाह हमें चाहे ये चीज़ बुरी लग रही हो तेरी तरफ से इसमें ज़रूर खैर होगी। ये हमारा एक अकीदा एक सोच होनी चाहिए कि जब कोई चीज़ आती है अल्लाह की तरफ से, कोई परेशानी या कोई तकलीफ आए, ज़रूर इसमें अल्लाह ताला ने कोई खैर रखी है। अब कोई सर्जन है, जानते हैं सर्जन का मतलब ही क्या हुआ, सर्जन है तो वो क्या करेगा, किसी कोई बीमार है उसके बारे में कहता है कि अच्छा मैं इसकी सर्जरी कर दूँ, हाँ हाँ ज़रूर कर दीजिए, वो तो लोग उसके लिए खुशाम इंतजार करते हैं, खुशामद करते हैं कि नहीं इसकी सर्जरी की ज़रूरत है, हालांकि वो क्या करेगा, हाथ काटेगा, कोई चीज़ काटेगा, तो ये काट रहा है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नहीं ये उसमें उस शख्स के साथ खैरखाही करना चाहता है, ये काट रहा है उसकी बड़ी तकलीफ दूर करने के लिए, क्या अल्लाह ताला के बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि अल्लाह तूने हमारे घर में अगर कोई परेशानी कोई बीमारी ये भेजी है तो ज़रूर या अल्लाह तो उससे बेहतर कोई अच्छी चीज़ देने वाला। जब एक आम तबीब एक जब कड़वी दवाई देता है तो हमको हमें यह एतमाद होता है कि इससे बेहतर कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, तभी ये दे रहा है, तो अल्लाह ताला जो कि अतिब्बा का पैदा करने वाला जो अरहमुर रहीमीन है, क्या वो हमें किसी तकलीफ से गुजारे और हमें उसके बदले में कोई बेहतरी ना मिले, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कांटा भी जब किसी मोमिन को चुभता है तो उसके बदले में भी अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाते हैं, उसके दरजात बुलंद फरमाते हैं, कोई चीज़ बगैर नफ़ा के नहीं होती। और ये अल्लाह ताला दुनिया में जिसको कहते हैं बाज लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला जन्नती के लिए पैदा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही तालीम दी कि देखो आफियत मांगो, लेकिन जब तकलीफ़ आ जाए तो ये नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होना था, नहीं आ गया या अल्लाह तेरी तरफ से, आने से पहले आफियत मांगो, आ जाए तब भी अल्लाह ताला से खैर और आफियत ही मांगी जाए, ऐसे कि या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम इस चीज़ को हमारे कमज़ोरी की वजह से हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन या अल्लाह जो कुछ दिया तूने हम जानते हैं कि इसमें ज़रूर खैर होगी, ज़रूर इसमें खैर होगी। इतने ऐसे वाक़यात हैं, फ़्लाइट में कोई जाना चाह रहा था फ़्लाइट मिस हो गई, हमारे अपने अकाबिर के वाक़यात में ऐसे वाक़यात हैं कि फ़्लाइट में जाना चाह रहे थे, फ़्लाइट मिस हो गई, बहुत कोशिश की नहीं जा सके, पता चला कि अच्छा वो तो फ़्लाइट ही गिर गई थी, हालांकि फ़्लाइट गिरने के वाक़यात कम होते हैं, लेकिन तब भी हमारे जानने वालों में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। قدیم زمانوں میں اسناف میں اس طرح ہوا ہے، بحری جہاز میں سفر کرنے والے تھے، بحری جہاز میں سفر ہوا کرتے تھے، سفر کرنے والے تھے، بہت کوشش کی اس جہاز میں جانے کی، نہیں جا سکے، پتہ چلا وہ جہاز ڈوب گیا۔ کچھ شروع لے سے ہے، اے اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، بہت سی مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر والی چیز تمہارے لیے کر دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بڑی حکومت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ اس کو اگر حکومت دیں گے تو اس کو حکومت دینے کی وجہ سے یہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یاد رکھے گا، بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تعلق میں اس کا اضافہ ہو جائے گا، اور ہم جیسے لوگوں کے سامنے اگر تھوڑے پیسے زیادہ آ گئے تو پھر اچھا نہیں ہے، تو ذرا سینہ بھی نکال کے چلنا پڑے گا، اب سانا سینہ جھکا کے چلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، چاہے ڈالر ہو چاہے کوئی چیز ہو، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اتارتے ہیں خاص مقدار کے ساتھ، بہت زیادہ وہ بھی انسان پھر ہلاک ہو جائے گا، بہت کم تب بھی پریشان ہو جائے گا۔ بس تو دنیا تو حوادث کی جگہ ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہے۔ بات یہ تھی کہ اچھا ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے عمل کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب بات سمیٹ کر میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی باتوں سے میں نقل کر رہا ہوں کہ چار کام کرنے ہیں، چار کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جب اس طرح کے حادثات جو آتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ آیتانی، سورج و چاند آیتانی من آیت اللہ، یہ انسان میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ذرا مضبوط کرنا ہے، دیکھ لیں کہاں ہمارے اندر کوتاہی ہو رہی ہے کسی عمل میں، کہاں ہمارے فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، کیا ہم نمازیں مسجد میں پڑھنے میں بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا فرائض قضا کر رہے ہیں یا قضا بھی نہیں ہو رہی ہیں، یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اپنا اللہ سے تعلق بڑھانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق، اللہ تعالیٰ کا دھیان مزید لانے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک واقعہ سے ہم سمجھ جاتے ہیں، بہت اچھا واقعہ ہے، یہ تاریخی واقعہ، کوئی حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ افلاطون کا نام تو سنا ہوگا بہت سے حضرات نے، افلاطون ویسے مٹھائی کے نام سے شاید بہت سے لوگ مٹھائی کو جانتے ہیں، مٹھائی کو افلاطون کہتے ہیں۔ اصل میں افلاطون جو ہے یہ ایک شخص تھا، بہت جس کو کہیں کہ بہت اعلیٰ دماغ، اعلیٰ صلاحیت، اللہ تعالیٰ بعضوں کو بڑی صلاحیت دیا کرتے ہیں، بڑی صلاحیت تھی، بڑا سمجھدار آدمی تھا، تاریخی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں انبیاء جو ہوا کرتے تھے وہ خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، بنی اسرائیل کے بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور وہ مصر کے فرعون وغیرہ، ان لوگوں کو دعوت کا حکم دیا گیا تھا، پہلے زمانے کے انبیاء خاص خاص قوموں کے لیے ہوتے تھے۔ بارہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے کسی خادم کے ساتھ جا رہے تھے، افلاطون نے دیکھ لیا، اتنا تیز آدمی تھا کہ دیکھ کے ہی پہچان لیا، یعنی چلتے ہوئے دیکھ کے، کسی کو دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ کوئی بڑا قابل آدمی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے والے کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کتنا قابل ہے، ہمیں تو پڑھانا ہوتا ہے، امتحان لینا پڑتا ہے، اس کو مارک کرنا پڑتا ہے، پتا نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، مدرسے والے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو مارکنگ وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بڑا مسئلہ ہوتا ہے مارکنگ کرنا ہم لوگوں کے لیے، پڑھانا پھر بھی ٹھیک ہے، پورا سال پڑھا لیا، لیکن وہ جب مارکنگ کا وقت آتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اب تو انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا نا مارکنگ کو، اچھا یہ اے بی سی میں سے ایک سلیکٹ کر لو، کمپیوٹر خود ہی مارک کر دے گا، ہمارے یہاں تو پورا پورا پڑھنا پڑتا ہے ہمیں کہ کس نے کتنا لکھا، کتنا سمجھا۔ یہ افلاطون جو تھا وہ کسی شخص کو دیکھ کے، چلتا ہوا دیکھ کے، یہ اچھا نہیں، اس کے یہ لگتا ہے کوئی سمجھدار کام کا آدمی، اس سے افلاطون کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اچھا مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ تو کوئی گیا ان کو موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ فلانے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، علیہ السلام تو بڑے سیدھے سادھے متوازے ہوا کرتے تھے، نہیں کہ تم بات کرنے تو وہ آ جائیں، تو بات نہیں، چلے گئے۔ افلاطون کے پاس گیا، افلاطون نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ پورا آسمان و زمین یہ کمان بنا دی جائے، جیسے تیر پھینکتے ہیں، तीर फेंकने के लिए उसको कमान बना दिया जाए। मिसाल से समझा रहे, क्योंकि बड़ों की बातें भी उस तरह की होती हैं। उसे का पूरा आसमान और ज़मीन रहने के काबिल ना हो, कमान हो, और जितने भी मुसीबतें, परेशानियां, हवादिस, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब के सब तीर बन जाए और फेंकने वाला अल्लाह ताला हो। अब बताइए कि बचने की क्या सूरत है, ये सवाल है। यानी गोया कि आप दुनिया में तो रह नहीं सकते, इससे दुनिया तो कमान है। जितनी भी परेशानियां और मसाइब हैं वो सब तीर की शक्ल में है और अल्लाह ताला उनके जरिए से फेंकना चाह रहा है। अल्लाह ताला फेंक रहा है, कौन रोकेगा? तो फेंकने वाला अल्लाह ताला, हवादिस वगैरह जो है वो तीर और पूरा आसमान और जमीन कमान। अब बताइए कि बचने की कोई सूरत है? मूसा अलैहिस्सलाम तो जाहिर है, मूसा अलैहिस्सलाम थे, इनका कुरान में कितना तस्करा, सबसे ज्यादा तस्करा इन्हीं का है। हाँ, बहुत आसान है, तीर फेंकने वाले के पास गोद में जाके बैठ जाए। ये अफलातून समझ गया कि हाँ, कहने लगा कि ये आपके अलावा कोई नबी के अलावा ये जवाब नहीं दे सकता। समझ गया कि ये सच्चे नबी, यही ये जो मैं बता रहा था कि हवादिस और परेशानियों के मौके पर हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। हम सोचते हैं अच्छा और ज़रा कमा लें, और थोड़े से पैसे जमा कर लें, इससे कि और ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, हमें ज़रूरत है जहाँ से हवादिस आ रहे हैं, जहाँ से जो फैसले कर रहा है, जो मुख्तकदीर हमारी लिख रहा है, उसके पास चले जाएँ कि या अल्लाह, हम तो तेरे पास आ गए। आऊज़ु बिका मिनका, ए अल्लाह तेरी पनाह भी मांगी, तेरे पास ही आएंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए, हमें तकलीफ तेरी तरफ से ही आ रहा है, जो भी आ रहा है, हम तेरे पास ही आएंगे। या अल्लाह तेरे तुझसे ही ताल्लुक़ करना है और तुझसे ही मांगना है। हमारे अंदर ये वाकयातन कमी है। एक तो वाकया तो वाकया था, वो तो तारीखी बात थी, वल्लाहु आलम वाकया कितना सही है, लेकिन हमारे लिए तो बारह सबक है। हमारे लिए सबक के जितना होता है हम उसमें दुनिया के पीछे भागते हैं। रोजी में तंगी आ गई, हम सोचते हैं अच्छा नहीं, रोजी में तंगी आ गई तो कोई अच्छी जॉब तलाश करें। इंसान ये सोचता है, ठीक है वो भी करें, अल्लाह ताला ने हमें असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया, ठीक है वो भी करें, लेकिन पहला और असल काम ये था कि हम अल्लाह ताला से मांगते कि या अल्लाह ये परेशानी है, तो मेरी मदद फरमा दे। कुछ मजीद इबादतों का अहतमाम कर लेते हैं, कुछ मजीद कुछ अमाल कर लेते कि या अल्लाह मैंने तुझे नाराज़ किया, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशानी आ रही है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह ताला बाज़ों को एक बातों से कुछ और बातें जहन में आती हैं, लेकिन वाकई एक अजीब बात है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला इतनी ढील देते हैं कि वो गुनाह करते जाते हैं, जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं आती। वो ये समझते हैं अच्छे ऐसे होते हैं, उनसे ही कर रहे हैं, कोई पकड़ नहीं आ रही, हम गलत होते तो कोई आज़ाब आ जाता। हम देख रहे हैं मक्का वालों के साथ क्या हुआ था, आप साथियों को तकलीफ़ें पहुँचाई, इतनी बड़ी शख्सियत जिनसे जिनकी जिन दायरे के आप रसम के मकान की कोई शख्सियत हुई नहीं, हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयद और रसूल हैं, तमाम रसूलों के सरदार, सबसे आला मकाम पाने वाले, तकलीफ कौन पहुँचा रहे हैं, मुशरिकीन मक्का, तो जाहिर है कि उन पर तो एक सेकंड में आज़ाब आ जाता। मक्का का पूरा दौर गुजर गया, 13 साल मक्का मुकर्रमा के, या चलो तकालीफ का ज़माना अगर हम देखें तो चले 10 साल मक्का मुकर्रमा में, जब मुशरिकीन से जो तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ था मदीना मुनव्वरा जाने के बाद भी, फिर उन्होंने मदीना में जाकर हमला करने की कोशिशें की, बदर का वाक़ पेश आया, उहद का वाक़ पेश आया, अहज़ाब में सब जमा हो गए, होना क्या चाहिए था, हमारी नज़रों के एतबार से फ़ौरन आज़ाब आ जाता। 8 साल मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का की तरफ से ईज़ाओं के कोशिशें मुस्तकिल जारी थी। अल्लाह ताला ने क्या किया, जो हजरात तकलीफ पहुंचा रहे थे उनको सहाबी बना दिया, यानी सिर्फ यही कि माफ कर दिया, उनको सहाबी बना दिया। अब कोई वली, कोई बुजुर्ग उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, रज़ी अल्लाह तआला। अबू सुफियान फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हो, रज़ी अल्लाह तआला। अब हमें कहना पड़ेगा रज़ी अल्लाह तआला कि उनके मकाम को कोई नहीं पहुँच सकता। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, बहरहाल तो बाज वो होते हैं जिनको ढील मिलती है, और बाज ऐसे भी लोग होते हैं कि जो एक गुनाह करेंगे फौरन उनको कोई तकलीफ पहुंच जाएगी। तकलीफ पहुंचने का मतलब यह है कि अच्छा अब मुतनब्बे हो जाओ, या अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि देखो। और बाज़ों को यहाँ तक देखा कि गुनाह का नहीं, बस कभी ऐसा होता है कि बाज़ों को दिल में ज़रा सा दुनिया की ज़रा रग़बत होने लगती है, अच्छा ज़रा ये ख़रीद लें, अच्छा फ़लानी चीज़ ले लें, دنیا کی طرف تھوڑی توجہ ہونے لگی اور کوئی پریشانیاں گئے چھتر بستی پہ، خود ہی ان کو تنبیہ ہو گئی، نہیں اب مجھے نہیں چاہیے، اب مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ مختلف نظام رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر کسی کو کبھی اس طرح کی کوئی گناہ یا نافرمانی کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اس کو برا نہ سمجھے بلکہ اس کو نعمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں تبھی تو مجھے رکاوٹ ڈالی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیلا چھوڑ دیا، کرتے رہو جو کرنا ہے، کرتے رہو جو کرنا ہے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کب کس کو توفیق دے دے، اپنے بارے میں ہمیں بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے. تو پہلا کام، بہرحال پہلا کام ہمیں اس طرح کے زلزلوں کی یا حوادث وغیرہ کی خبروں کے موقع پر ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا ہے. جیسے جیسے یہ اللہ والے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، پریشانیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور تو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی برکت سے فتنے دبے رہتے ہیں. جب اللہ والے دنیا سے اٹھتے ہیں تو فتنوں میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ جب کسی کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، ان کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دینا. اس کا مطلب ہے بڑوں کے جانے کے بعد، بزرگوں کے جانے کے بعد فتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک کام. دوسرا کام، دعا کا اہتمام. دعا کا اہتمام اصل چیز تو پہلی ہی ہے، باقی چیزیں اس کے ذمہ میں آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ چار چیزیں ہمارے مشائخ نے بیان کی ہیں، نمبر ایک اللہ کے ساتھ تعلق، دوسری چیز دعا کا اہتمام. دعا ایسا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور وہی بلازم وغیرہ کی بات آئی تھی اسی سے متعلق، تو دعا کا اہتمام. اور دعا واقعی بہت کام کی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے دعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ایک مستقل عنوان ہے دعا کا. تو دعا ان کاموں کے، ان پریشانیوں یا ان حاجتوں کے لیے بھی مفید ہے جو انسان کو ابھی فی الحال پیش آ چکی ہیں، آئندہ آنے والے مصائب سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مفید ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا. دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ شخص دعا مانگے گا اور پھر میں یہ اس کے بندے میں یہ فیصلہ کر دوں گا. لیکن حدیث میں بہرحال اسی طرح سمجھایا ہے کہ لا يرد الدعاء قدر الا الدعاء، اس طرح کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تقدیر کو لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو اور اللہ کے فیصلے کو دعا کے علاوہ کوئی چیز لوٹا نہیں سکتا. یہ دعا، یہ دوسری چیز ہوگی ہمارے کرنے. تیسری چیز استغفار، استغفار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف اوقات، مختلف مواقع پر استغفار کرنا، عبادتوں کے بعد استغفار کرنا. قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا، اللہ کے نیک بندوں کا حال رات میں نماز پڑھتے ہیں. قرآن نے جو بیان کیا، رات میں نماز پڑھتے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں کیا کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اسحار سحری کا وقت، رات کا آخری حصہ. راتوں میں عبادت کرتے ہوئے جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو یہ نہیں کہ یا اللہ ہم نے بہت اچھے کام کر لیا آج، یا اللہ معاف فرما دے، تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکے. وبالاسحار ہم یستغفرون، عبادت کے بعد استغفار کا حکم ہے. نماز کے آخر میں، نماز ختم کرنے کے بعد سنت ہے تین مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یا اللہ تیرے سامنے جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس دھیان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میں اس طرح نہیں کر سکا، یا اللہ معاف فرما دے. ہماری نمازیں بھی، ہماری عبادتوں کے بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. تو گناہ تو ظاہر ہے بہت دور کی بات ہوگی، گناہوں سے تو بدلے اولا استغفار کی ضرورت ہے. تمہارا استغفار، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہی علیہ السلام نے، دیکھو تمہیں پریشانی آ رہی ہیں، قحط ہو رہا ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، استغفار کرو. یہ قرآن نے ہمیں اسی لیے بتایا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. تمہارے لیے تیسری چیز ہو گئی استغفار، یہ ایک مستقل ہے. استغفار کے فضائل وغیرہ آپ حضرات نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ایک حدیث ہے جو بہت جامع حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، وہ گھڑی رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ چلتے ہی رہوں گے جب تک وہ گھڑی آگے نہیں بڑھ گئی. میں تو کب سے اس کو دیکھ رہا ہوں، میں کہا اچھا ٹھیک ہے، تقائم میں بڑی برکت ہو رہی ہے. جی بس ٹھیک ہے، اب اخیر کو ختم کرتے ہیں استغفار کی بات. اور आप जो देखेंगे कि हाँ मैं सही कर रहा था, मैंने लंबा नहीं किया अभी तक, तो जब शुरू किया था अभी उसी उसी मिनट से हूँ। इस्तग़फ़ार, इसके फ़ज़ाइल वगैरह की अभी बात नहीं करते, जैसे कि अब मैंने देख ली घड़ी कि आगे बढ़ गई। तीन तीन चीज़ें होगी और चौथी चीज़ है सदका। सदका अहादीस में इसको बहुत ताकीद के साथ बयान किया गया। सदका जो है बलाओं को टालने में बहुत मुफीद है, मुसीबतों से बचाने में बहुत मुफीद है। यानी ये सदकात में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है, अहादीस में इसकी बड़ी तफसील आती है। यहाँ तक के बाद हदीसों में आप ने फरमाया कि बीमारों को अगर बीमारी का इलाज करना हो तो सदकात के जरिए से करो। हमें नहीं मालूम सदकात में क्या होता है। हमारे लोगों में ये मालूम है किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई तो क्या करेंगे, बकरा काटना है, बकरा सत्य में बकरा बकरा काटा हो तो कुर्बानी वगैरह में उसकी सदक की फजीलत होती है, कुर्बानी के दिनों के साथ खास है। वरना तो असल सदका है, बकरा हो कोई और चीज़ हो, किसी को खाना दे दें, किसी को पैसे दे दें। सदकात में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है कि उससे बड़ी बड़ी आफतों और बड़े बड़ी बड़ी बलाओं के आने के बाद भी वो बलाएँ टल जाती हैं तो आने से पहले भी उनके लिए रुकावट हो जाती है। और इतनी बड़ी ताकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर दोज़ख का जिक्र फरमाया, फरमाया कि देखो दोज़ख बड़ी सख्त चीज़ है, दोज़ख के मनाज़िर पर बयान फरमाया, फरमाया कि देखो इत्तकुन नार, आग से, दोज़ख के आग से अपने आप को बचाओ। वलव बिशिक्कि तमरतिन, ज़्यादा नहीं दे सकते, खजूर में एक टुकड़ा ही दे दो, वो भी आग से बचाने में तुम्हें काम आएगा। कितनी ताकत होगी कि खजूर का एक टुकड़ा वो आग दोज़ख की आग को बचाने से बचने में काम आ जाए, इसका मतलब है वाकईतन उसमें बड़ी ताकत है। तो ये चार चीज़ें हो गई, चार चीज़ें हो गई। ताल्लुक, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम करें। नंबर दो, अपने दुआओं का अहतमाम करें। नंबर तीन, इस्तग़फ़ार, और इस्तग़फ़ार अपने लिए भी और अपने घर वालों और मुतअल्लिक़ीन के लिए जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए भी, सबको। हदीस में आता है कि जो इंतकाल कर जाने वाले लोग हैं वो जिंदा लोगों की तरफ से, अपने भाई बहन रिश्तेदार जानने वालों की तरफ से इस्तग़फ़ार का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनकी तरफ से कोई दुआ उनको पहुँच जाए, उनको कोई दुआ पहुँच जाए। तो इस्तग़फ़ार अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जो जिंदा है उनके लिए, जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए, और इस्तग़फ़ार और सदक़ात का अहतमाम। ये चार चीज़ें ख़ास तौर पर हमें इन हालात में इसके अहतमाम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सही माना में हमें जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसकी हमें तौफीक अता फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إله العالمين امسك مغفرة فرما. إله العالمين يا الله تمام گناہوں کو معاف فرما دے. إله العالمين يا الله اب تک کی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہر قسم کے گناہوں کو يا الله معاف فرما دے. يا الله تیری نعمتوں کی جو ناقدریاں کی ہیں وہ بھی معاف فرما دے. إله العالمين يا الله تیری کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں یا اللہ اس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہے. یا اللہ اس کو یا اللہ ہم نے نعمت یا اللہ سمجھا بھی نہیں. الہ العالمین تیری طرف سے یا اللہ کتنی یا اللہ کبھی تیری طرف سے یا اللہ کوئی رکاوٹ یا اللہ کسی طرح کی کوئی یا اللہ نعمتوں کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کرنے کی کوئی صورت ہو جاتی ہے تو یا اللہ ہم یا اللہ صبر یا اللہ جس طرح صبر کرنا چاہیے وہ کر نہیں سکتے. الہ العالمین یا اللہ صحیح معنی میں شکر بھی عطا فرما اور یا اللہ جو تیری یا اللہ تقدیر ہے اس پر رضا ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین ہماری سوچ درست فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال درست فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق درست فرما. الہ العالمین اپنوں کے ساتھ یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ بیوی بچوں کے ساتھ یا اللہ بھائی بہنوں کے ساتھ. الہ العالمین یا اللہ ہمارے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کام میں یا اللہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اخلاق اختیار کرنے چاہیے یا اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیب فرما دے. الہ العالمین یا اللہ صحیح اسلامی تعلیمات اور صحیح اللہ اسلام میں جو صحیح اخلاق کی تعلیم ہے یا اللہ اس پر مکمل اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین یا اللہ ہمیں یا اللہ جو کرنا چاہیے جو اعمال کرنے چاہیے یا اللہ جن جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور سے یا اللہ اس دور میں جبکہ ہر طرف سے یا اللہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں یا اللہ برائیوں کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں یا اللہ گناہوں کی طرف لے جانے والی صورتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یا اللہ تیرے نیک بندے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. الہ العالمین یا اللہ خاص طور سے ان مواقع میں اور یا اللہ ان ایام میں ہمیں جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام ہمیں نصیب فرما دے. الہ العالمین دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کا دھیان بھی ہمارے دلوں میں اتار دے اور یا اللہ آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے ذمے جو حقوق تو نے رکھے ہیں جو حقوق اللہ حقوق العباد ہیں حقوق اللہ ہیں بندوں کے حقوق ہیں تیرے حقوق ہیں صحیح طور پر یا اللہ جس طرح تیری پسندیدہ جو تیرے پسندیدہ طریقہ ہے تیری مرضیات ہیں اس کے مطابق یا اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا اللہ تو ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرما اور محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک نیک بندوں کی جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما دے. الہ العالمین یا اللہ ہمارے اعمال کو تو جانتا ہے
या अल्लाह जितना जाहिर में है बातिन में उतना भी नहीं, इलाहल आलमीन या अल्लाह, तो हमारी हालत दुरुस्त फरमा दे या अल्लाह, हमारी हालत दुरुस्त फरमा दे और महत अपने फजल व करम से खालिस या अल्लाह तेरे रहम करम और फजल व करम के साथ हमें या अल्लाह अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे, दुनिया में भी नेक बंदों के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा, आखिरत में भी या अल्लाह नेक बंदों के साथ हमारा हशर फरमा, और या अल्लाह उनकी मोहब्बत का जो तकाजा है कि या अल्लाह सुलहा के तरीका इख्तियार करें ज़ाहिरी शक्ल सूरत में, आमाल में, अखलाक में, और या अल्लाह बातिन में हर तरीके में या अल्लाह सुलहा वाला तौर तरीके में अता फरमा दे, और महज अपने फजल करम से कबूल फरमा कर नेक बंदों की जमात में हम सबको शामिल फरमा दे, किसी को भी महरूम न फरमा। इलाहल आलमीन हमारे मुतअल्लिकीन घरों में जो भी छोटे बड़े हैं, हमारे आयजा अकरीबा और जिनका भी इंतकाल हो चुका है जो हयात हैं, तमाम की मगफिरत फरमा, तमाम को दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, तमाम को हमारी दुआओं में शामिल फरमा ले। या अल्लाह दुनिया भर में जहाँ भी तेरे बंदे परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, या अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा, इलाहल आलमीन परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मकरूज़ों के कर्जों को गैब के खजानों से अदा फरमा, या अल्लाह जो गुनाहों में मुबतला है उन्हें हिदायत अता फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह जो दीन से दूर हो रहे हैं, या अल्लाह जिन पर या अल्लाह जिनको बुरी सोचों में और या अल्लाह वसाविस वगैरह से परेशान होकर या अल्लाह जो बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, जो फितनों का शिकार हो चुके हैं, तमाम को या अल्लाह फिर या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे साबित कदमी नसीब फरमा दे, और या अल्लाह आफियत दुनिया व आखिरत की खैर नसीब फरमा। इलाहल आलमीन या अल्लाह हम में से जिससे भी किसी ने दुआओं के लिए कहा हो या लिखा हो या हमसे दुआओं के मुतवक्के हैं, या अल्लाह जो अब से या अल्लाह खास तौर पे वो हजरात जो अब से कुछ अर्सा पहले हमारे साथ बैठा करते थे, हमारे शमीम साहब हैं, हमारे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या अल्लाह और हजरात हैं, तो या अल्लाह एक एक करके जाते रहे, या अल्लाह एक एक करके या अल्लाह हमारे दरमियान से चले गए, या अल्लाह खास तौर से इंतकाल करने वालों की या अल्लाह मगफिरत फरमा, उनके दराजात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनकी जो खिदमात जो उन्होंने दीन के सिलसिले में की, जो या अल्लाह लोगों की जो खिदमात लोगों की आयतें की, तमाम को कबूल फरमा कर अपनी शान के मुताबिक उन्हें बदला अता फरमा, जो गलतियाँ हो गई कोताहियाँ होंगी तमाम को माफ फरमा और मुकम्मल मगफिरत फरमा कर या अल्लाह उनकी खबरों को जन्नत का बागीचा बना दे, हर तरह के राहत और आफियत के असबाब उनके लिए मुहैया फरमा या अल्लाह, और या अल्लाह हमारे और आयसा करीबा में जिनका भी इंतकाल हुआ सबके या सबके या अल्लाह सबके हक में दुआएं कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन या अल्लाह जितने भी दुनिया भर में जहाँ भी दीनी काम हो रहे हैं और या अल्लाह तुझे वो पसंद है, या अल्लाह उन कामों को कबूल फरमा, उन काम करने वालों की हिफाजत फरमा, हर तरह की या अल्लाह मुश्किलात उनके लिए आसान फरमा, रुकावटें दूर फरमा, या अल्लाह तरक्यात अता फरमा, इलाहल आलमीन हर तरह के फितरों से हिफाजत फरमा, चाहे तबलीगी जमातें हों, या अल्लाह खानकाने हों, मदारिस हों, मकातिब हों, अफराद या इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर जो भी काम कर रहे हैं तमाम को कबूल फरमा लें। इलाहल आलमीन या अल्लाह महद अपने फजल व करम से या अल्लाह तूने हमें जो सलाहियतें दी हैं आफियत के साथ दीन की खिदमत के लिए और दीन की इशाअत के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इशाअत के लिए या अल्लाह उन सलाहियतों को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर से मांगी वो खैर हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरू व फितन से पनाह मांगी उन तमाम शुरू व फितन से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.